ಸಚ್ಚಿನಂದನ ಗೌರ ಹರಿ ಜಯ ಸಚ್ಚಿನಂದನ ಗೌರ ಹರಿ ಗೌರ 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 ಹರಿ ಗೌರ 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 ಹರಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜಯ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ವೃಂದ ಕೀ ಜಯ ನಿತಾಯ ಗೌರ ಪ್ರೇಮಾನಂದೇ आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 16 और श्लोक 17 हम पढ़ रहे हैं। कृपया आप सब लोग मेरे से ये श्लोक दोहराइए। मातृभक्ति ही परस्त्रीषु पत्न्यार्द ಇವಾತ್ಮನ ಮಾತೃಭಕ್ತಿ ಪರಸ್ತ್ರೀಷು ಪತ್ಯಾ ಮರ್ದ ಇವಾತ್ಮನ ಪ್ರಜಾಸು ಪಿತೃವತ್ ಸ್ನಿಗ್ಧ ಪ್ರಜಾಸು ಪಿತೃವತ್ ಸ್ನಿಗ್ಧ ಕಿಂಕರ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಾಂ ಕಿಂಕರೋ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಾಂ ಮಾತೃಭಕ್ತಿ ಪರಸ್ತ್ರೀಷು ಪತ್ಯಾಮದ್ದೈವಾತ್ಮನಃ ಪ್ರಜಾಸು ಪಿತೃವಸ್ನಿಗ್ಧಃ ಕಿಂಕರೋ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಾಂ
समान आदर करने वाला परस्त्रीषु पराई स्त्री के प्रति पत्न्याम अपनी पत्नी को अर्धः आधा इव सदृश आत्मनः अपने शरीर का प्रजासु नागरिकों के प्रति पितृवत पिता के समान स्निग्ध स्नेही किंकर दास ब्रह्मवादिनाम भगवान की महिमा को उपदेश करने वाले भक्तों का ज ट्रांसलेशनल परपोर्ट वाइज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की। यह राजा सभी स्त्रियों को अपनी माता के समान सम्मान देगा और अपनी पत्नी को अपने शरीर का आधा अंग मानेगा। यह अपनी प्रजा के प्रति पिता के समान स्नेही होगा और अपने आप को भगवान की महिमा का उपदेश करने वाले भक्तों का परम आज्ञाकारी दास समझेगा। तात्पर्य, विद्वान मनुष्य अपनी पत्नी के अतिरिक्त सारी स्त्री को अपनी माता के समान मानता है, अन्यों की संपत्ति को गली में पड़ा कूड़ा समझता है और अन्यों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है जैसे वह अपने साथ करता है। ये विद्वान पुरुष के लक्षण है जिनका उल्लेख चाणक्य पंडित ने किया है। शिक्षा का यही मानदंड होना चाहिए। शिक्षा का अर्थ शैक्षिक उपाधियां प्राप्त करना ही नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि उसने जो कुछ अपने व्यक्तिगत जीवन में सीखा है उसे कार्य रूप में परिणित करे। विद्वानों के लिए के ये लक्षण राजा पृथ्वी के जीवन में प्रकट थे। राजा होकर भी वह अपने को भगवान के भक्तों का दास मानता था। वैदिक शिष्टाचार के अनुसार यदि कोई भक्त राजा प्रसाद में जाता तो राजा उसे तुरंत अपना आसन प्रदान करता था। ब्रह्मवादी नाम शब्द अत्यंत सार्थक है। ब्रह्मवादी का अर्थ है भगवान का भक्त। ब्रह्मा परमात्मा तथा भगवान ये पराब्रह्म के विविध नाम है। पराब्रह्म तो श्री कृष्ण है। इसे भगवद्गीता में अर्जुन ने स्वीकार किया है, परम ब्रह्म परम धाम। इस प्रकार ब्रह्मवादी नाम भगवान के भक्तों का सूचक है। राज्य को चाहिए कि भगवान के भक्तों की सदा सेवा करे और आदर्श राज्य को चाहिए कि भक्त के आदर्श के अनुसार अपना संचालन करे। चूंकि राजा पृथ्वी ने इस नियम का पालन किया इसलिए उसकी अत्यंत प्रशंसा की जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सो ये पाठक ये अद्भुत श्लोक में चार चीजों का उल्लेखन है। बहुत ही सावधान से सुनिए भक्त लोग। इसमें पहला ये बताया गया, परस्त्रियों को अपनी माता के समान सम्मान होना चाहिए। इसलिए चाणक्य पंडित ये कहते हैं, मातृवत परदारेषु लोष्ट्रवत परधनेषु आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति संपंडितः। आजकल कई लोग अपने आप को पंडित बोलते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं ना कोई ब्राह्मण जन्म लिया है उसको पंडित जी बोलते हैं। मगर एक्चुअली पंडित का अर्थ ये नहीं होता। पंडित का अर्थ ये नहीं है कि कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया वो ऑटोमेटिक पंडित बनता, ऐसा नहीं है। पंडित का वो लक्षण है, चार तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। मातृवत परधारेषु, बाकी स्त्रियों का अपने पत्नी को छोड़कर जितने भी बाकी स्त्रियां हैं सबको मां के रूप में जो स्वीकार करते हैं वही पंडित है। मातृवत परधारेषु लोष्ट्रवत परधनेषु, एक पत्थर जैसा पर धन जो है बाकी लोगों का जो धन है उसको लोष्ट्रवत मतलब पत्थर जैसा समझते, कोई वैल्यू नहीं है। आत्मवत सर्वभूतेषु, बाकी जीवों का सुख दुख अपना ही सुख दुख जो मानता है उसको ही पंडित कहते हैं। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि परदारेषु मतलब इसमें प्रभुपाद जी चार नियम बनाया अंतर्जातीय कृष्ण भावनामृत संघ में। इनफैक्ट सभी प्राणियों के लिए, मानव जो भी इंसान है उसके लिए चार नियम लागू है। मांसाहार नहीं करना चाहिए, मद्यपान नहीं लेना चाहिए, परस्त्री गमन नहीं करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो शास्त्र में ऐसे क्यों बताया? तो शास्त्रों में भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक पुरुष को ये संसार में जो बंधन करने का वस्तु है बहुत चीज है। एक औरत एक बंधन करने का चीज है भौतिक चक्र में फंसाने का, धन है, दौलत है, कीर्ति है, प्रतिष्ठा है। लेकिन भगवान कपिल देवहूत से कहते हैं संसार में प्राणी को बंधन करने का हार वस्तुओं में जो वो सबसे स्ट्रांग वस्तु है ये जो है औरत। औरत के अट्रैक्शन की वजह से ही पुरुष बंधन में आ जाता है। तो बक्सीदंत सरस्वती ठाकुर चैतन्य भागवत का श्लोक नंबर 29 चैप्टर 1 का ऑलमोस्ट 10 पेज व्याख्यान किया है जीव को एक औरत के वजह से कैसा बंधन में आ जाते हैं। तो इसलिए इसमें ये बताते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु इतना स्ट्रिक्ट था औरतों के साथ। कोई भी भगवान चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास ग्रहण किया था, संन्यास ग्रहण करने के बाद कोई भी औरत उसके नजदीक में नहीं आ सकता था। अगर प्रणाम करना है वो दूर से प्रणाम करते थे। अभी मॉडर्न डे सिविलाइजेशन में अभी हम देखते हैं ऐसा किधर भी नहीं हो रहा, मगर शास्त्र का जो स्ट्रिक्टनेस है चैतन्य महाप्रभु ने पालन किया। चैतन्य महाप्रभु उसका अवतार में कभी स्त्री का शब्द ही सुना नहीं था। कभी कभी कोई औरत आते तो भगवान उस डायरेक्शन में चले जाते। भगवान गौरंग महाप्रभु कहते हैं मेरा मन एक औरत का, एक स्त्री का लकड़ा से बना हुआ डॉल को देखकर भी मेरा मन उत्तेजित हो जाता, ऐसा बोलते। तो हम कितना सावधान होना चाहिए ये सोचना चाहिए। शास्त्र में पूरा श्रीमद् भागवतम में इतने इंस्ट्रक्शंस है। भगवान कपिल देव देवाहुति के बताते हैं, तो नारद जी प्राचीन बारही को बताते हैं, और भगवत का एकादश स्कंद में वो ब्राह्मण महाराज यदु को भी यही उपदेश दे देते, और उर्वशी पुरुरव का स्टोरी में भी यही हम देखते हैं। महाराज पुरुरव उर्वशी का बंधन में कैसा आके अपने पूरा बुद्धि को खो जाते हैं, ये भी श्रीमद् भागवत में वर्णन है। संसार में भगवान नर नारायण ऋषि के सिवा कोई भी स्त्री का अट्रैक्शन से बच नहीं सकते। इसलिए भगवान कपिल देव कहते हैं कि हर पुरुष को बहुत सावधान से रहना चाहिए, और कभी भी औरतों का संग और औरतों का संग करने वाला का संग भी त्याज करना चाहिए। ब्रह्मचर्य तपस्या ब्रह्मचर्य न शमेन च दमेन च त्यागेन च, ये शास्त्र कहते हैं इससे परमेश्वर गोविंद का साक्षात्कार होता है। जो ये नियम को पालन नहीं करता, ब्रह्मचर्य व्रत को पालन नहीं करता, वो भगवान कृष्ण को पा नहीं सकते। तपस्या ब्रह्मचर्य न समेन च दमेन च त्यागेन च, बहुत ही जरूरत काम हो या कंपल्सरी हो, अन्यथा पुरुष को स्त्री का संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह शास्त्र भागवत का उपदेश है। भागवत में यह कहा गया कि औरत एक अग्नि जैसा है, पुरुष एक बटर जैसा है, और अग्नि के समक्ष में ये बटर जैसा पिघल जाता है, वैसे ही पुरुष जो है भ्रष्ट हो जाता। तो शास्त्र बारंबार ये सावधान करते हैं। ये सावधान करने के बाद में भी अगर पुरुष अपने स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्रियों का संग के लिए तड़पते हैं तो वो अज्ञानी हमेशा संसार में भटकना पड़ेगा। तो शास्त्रों में भागवतम पांचवा अध्याय में ये भी बताए कि नरक लोक में, नरक में जो इलिसिट सेक्स मतलब अपने स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्रियों के साथ संग करने वाला का क्या पनिशमेंट मिलता है, श्रीमद् भागवत का पांचवा स्कंद में है। उसमें ये कहते हैं जो पुरुष अपने स्त्री को छोड़कर बाकी स्त्रियों का साथ संबंध रखते हैं वो मरने के बाद नरक में लेके जाते हैं उसको यमदूत। और उधर उस स्त्री का एक कांस्य विग्रह रहता और उस विग्रह को समथिंग इसको 10,000 डिग्री टेम्परेचर में गर्म किया जाता और इस पापी को बताते हैं कि तुम उसको आलिंगन कर। तब इस पापी को जो घोर दुख लगेगा इससे उसका पनिशमेंट हो जाता है। फिर वो उस नरक के बाद में पुनः पशु पक्षी बिल्ली कुत्ता बिल्ली से शरीरों में भटकते रहते हैं। तो शास्त्र बहुत ही वार्निंग देता है इसके बारे में कि ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और संन्यास ये तीनों आश्रम में औरत का शब्द भी नहीं सुनना चाहिए, औरत का फेस भी नहीं देखना चाहिए, मन में भी औरत के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन गृहस्थ लोगों को इसका मतलब ये नहीं कि गृहस्थ लोगों को लाइसेंस दिया है, गृहस्थ लोगों को लाइसेंस केवल दिया है केवल बच्चा पैदा करने के लिए, अन्यथा वो भी ब्रह्मचारी जैसा रहना चाहिए। ये शास्त्र में उल्लेखन है। ये सुनने के लिए बहुत कठिन लगता है मगर ये एक्चुअली शास्त्र में भगवान गोविंद को श्री कृष्ण को पाना है, संसार चक्र से निकलना है, तो ये इस कानून जो भगवान गोविंद श्री कृष्ण लिखा है शास्त्रों में इसको पालन करना पड़ेगा। तो भगवद गीता में इसके बारे में हमारा मन कैसा विचलित होता है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलता है, बहुत ध्यान से सुन लेना भक्त लोग। ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्ते शूपजायते। पहला पतन शुरू कैसा होता है भगवान कृष्ण एक्सप्लेन करते हैं, यू नो ध्यायतो विषयान् पुंसः, पहले ध्यान करना शुरू करते हैं। जब कोई भी औरत पसंद हो जाता उस औरत के बारे में ध्यान करना शुरू करते, उसके बारे में चिंतन करना शुरू करते, वो कैसा हंसते कैसा चल पड़ते ये सब सोचते रहते, पतित होने का लक्षण जिसके अंदर है। ध्यायतो विषयान् पुंसः, फिर क्या होता संगस्तेषु पजायते, संग मतलब उसके ऊपर उस विषय वस्तु के ऊपर संगस्ते उपजायते मतलब उसके और अटैचमेंट बढ़ते रहता है, संगस्तेषु पजायते। फिर क्या होता संगा संजायते कामः, उस संग के वजह से काम जो है बढ़ते रहता है। कामः क्रोधो विजायते, जब काम संपूर्ण नहीं होता फिर उस असंपूर्ण काम के वजह से क्रोध पैदा होता है। कामः क्रोधो विजायते, क्रोधः सम्भो सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंसा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। उस क्रोध के वजह से बुद्धि नष्ट होता, बुद्धि नष्ट होने के वजह से मनुष्य को स्मरण खत्म हो जाता है और उसके बाद में जीव जो है पतित हो जाता है। तो भागवत में ये कहा गया, ब्राह्मण एक अवधूत ब्राह्मण यदु को बोलते हैं कि संसार में ये औरत का जो अट्रैक्शन इतने स्ट्रांग होता कि ब्रह्मा जी और शिव के अंदर भी ये डर है, कब हमको माया औरत के रूप का माया हमको पकड़ के हमको माया का संसार में गिरा दे। ये डर इवन डेमीगॉड्स को भी है, इवन मतलब ब्रह्मा जी शिव जी जैसा महान देवताओं के अंदर भी है, तो बहुत सावधान रहना चाहिए। तो इस सावधानी से मायावादी लोगों का और कृष्ण भक्तों में दो तरीका है इससे इस समस्या से बाहर निकलने का। मायावादी लोग क्या करते हैं, इस माया का जो रूप को नहीं देखना, नेति नेति बोलते उसको नहीं देखना, उसको नहीं देखना करके हमेशा अपनी इंद्रियों को बहुत ही कष्ट दे देते, इंद्रियों को बहुत कंट्रोल काबुल में रखने के लिए बहुत भयंकर तपस्या, बहुत घोर कष्ट करते हैं। मगर कृष्ण भक्त ऐसा नहीं करते। कृष्ण भक्त क्या करते, जिस आंखों से जो आंख सुंदर स्वरूप देखने के लिए तड़पते हैं तो कृष्ण भक्त उस आंखों को आदेश देता, हे आंख संसार में अनंत कोटि सौंदर्य वस्तु है लेकिन कौन से स्वरूप जो है सब सौंदर्यों का सौंदर्य है। तस्याविंद नयनस्य पदारविंदम्, तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंदम्, जिसका नेत्र अरविंद नयन जैसा रहता है उस भगवान गोविंद का दिव्यमंगल सौंदर्य को चिंतन करो बोलते हैं, उस सौंदर्य को दर्शन करो। जैसे दशम स्कंध में ये बताते हैं, जब गोपियां भगवान कृष्ण के लिए ढूंढते ढूंढते हैं, फिर भगवान कृष्ण का लीला को इमिटेट करते हैं, फिर वापस भगवान कृष्ण का नाम संकीर्तन करते हैं, पुनः भगवान कृष्ण लौटाते हैं रासनृत्य में, फिर उस समय जब भगवान कृष्ण लौटाते हैं तो श्रीमद् भागवत उस परमेश्वर श्री कृष्ण के अलौकिक सौंदर्य के बारे में क्या बोलते हैं, ताशाम आविर्भूत शौरी, शौरी मतलब भगवान कृष्ण, ताशाम आविर्भूत शौरी, भगवान कृष्ण उधर आए, स्मयमान मुखाम्बुज, जिसका मुख का अम्बुज में स्मयमान मुखाम्बुज सुमंत मुस्कान है, स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधर स्रग्वी, पीताम्बर धारण किए हैं, साक्षात मन्मथ मन्मथ, साक्षात मन्मथों का मन्मथ जैसा भगवान गोविंद का स्वरूप। इसलिए भागवतम में भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक सौंदर्य के बारे में वर्णन है। जो स्त्रियों के प्रति पुरुष अट्रैक्ट होते हैं तो शंकराचार्य ये वार्निंग देते हैं कि जिस शरीर के लिए तुम अट्रैक्ट होते हो ये केवल एक बैग है, उसके अंदर मांस है, हड्डी है, पसीना खून इससे भरा हुआ एक इसका बैग है, इसको केवल ये चिंतन करो और ये चिंतन करो परमेश्वर गोविंद का शरीर सच्चिदानंद है। मगर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर गोविंद का शरीर और भौतिक सौंदर्य वस्तुओं में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि भौतिक सौंदर्य वस्तु जो हम देखते हैं, सुंदरी नारी जो देखते हैं, उसका शरीर असत्य है, अचित है, निरानंद है। वो शरीर से अगर आनंद भी मिले, उस आनंद का स्टार्टिंग पॉइंट रहता और एंडिंग पॉइंट रहता, आप समझ रहे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का शरीर जो है, उसका आत्मा और उसके शरीर में कोई अंतर नहीं है। देह देही विभेदोयम ना ईश्वरे विद्यते क्वचित, कूर्म पुराण में भक्त सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर ही उसका आत्मा है। और वो शरीर कैसा है, सच्चिद आनंद विग्रह तमेकम गोविंदम सच्चिदानंद रूपम, ये गोपाल तापनी उपनिषद कहते हैं। भगवान कृष्ण के शरीर, अगर कोई भगवान कृष्ण का शरीर को बाकी सांसारिक शरीर जैसा मानते हैं तो बहुत बड़ा पाप हो जाता है। इसलिए बृहत विष्णु स्मृति में ये भी कहते हैं कि यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः, जो कृष्ण परमात्मा का शरीर भौतिक है जैसा मानते हैं, यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः स बहिष्कारस्य स्रोतस्मात् विधानतः, उसको स्रोत और श्रुति पुराणों में बहिष्कार करना चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए। मुखम तस्य लाभापि सचैलम स्नानम आचरेत, उसका मुख भी देखेगा तो हम तुरंत स्नान करना चाहिए। मतलब भगवान श्री कृष्ण का शरीर जो है भौतिक नहीं सोचना हम कभी भी। भगवान श्री कृष्ण का शरीर का सौंदर्य जब भागवत का वर्णन है, वो कभी नहीं सोचना कि एक भौतिक सौंदर्य, भौतिक सुंदर पुरुष नहीं। भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्यता जो है अलौकिक है, अप्राकृतिक है, आध्यात्मिक है और सच्चित चिन्मय स्वरूप है। मतलब उस शरीर का ना आदि हुआ ना अंत हुआ होता है। तो इसके बारे में नेक्स्ट हम ये डिस्कस करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि पत्नी को अपने शरीर का आधा अंग मानते हैं, तो ये भी सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट तो हम कवर कर लिया थोड़ा बहुत, सेकंड पॉइंट में ये कहते हैं कि पत्नी को अपने शरीर का आधा अंग समझना चाहिए। तो शास्त्र विवाह यज्ञ का उल्लेखन करते हैं और पत्नी को ऐसा रक्षा करना चाहिए, पुरुष पति का धर्म है पत्नी को रक्षा करना, और ऐसा रक्षा करना कि मानो अपने शरीर को कैसा रक्षा करते उसी तरह पत्नी को भी उसी तरह का रक्षा करना चाहिए। तो तो ये रामायण में ये दोनों सेंटेंसेस का स्टोरी आता। रावण जो है ब्रह्मज्ञानी था, मगर उसका पतन कैसा हुआ और भगवान रामचंद्र कौन सा धर्म निभाया, ये दोनों सेंटेंस भगवान रामचंद्र और रावण के चरित्र में आते हैं। भगवान रामचंद्र अपने पत्नी सीता को अपने अर्धांगिनी मानता था, इतना रक्षा किया, और जो रावण था ब्रह्मज्ञानी होकर वो परस्त्री गमन, जो अपने स्त्री को छोड़कर मंडोदरी को छोड़कर परस्त्री मतलब राम जी के पत्नी को ग्रहण करने के लिए प्रयास करते, अंत में क्या हुआ उसका, पूरा रावण श्री लंका जो है खत्म क्यों हुआ। इसलिए सब जब मेघनाद खत्म हो जाते, फिर कुंभकर्ण भी मर जाते, फिर रावण का सभी पुत्र मर जाते, फिर लास्ट में जब रावण भी तैयार हो जाते संग्राम में जाने के लिए, वो एक दिन के पहले, ये आध्यात्मिक रामायण में आता, एक दिन के पहले मंडोदरी रावण के पास आके बोलते हैं कि हे रावण, आपको अभी भी टाइम है आपको अभी भी टाइम है, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, सीता मैया तुम्हारा मां का सवाल है, मातृवत परधारेषु, वो तुम्हारा स्त्री नहीं है, वो राम जी का स्त्री है, मातृवत परधारेषु, तुम ब्राह्मण हो ब्रह्मज्ञानी हो, क्या ये तुम ये नहीं जानते हो कि परस्त्री मां जैसा होता, तुम उसको कैसा ग्रहण कर सकते, तुरंत मां देवी मां सीता को तुरंत राम जी को लौटा। तो रावण तभी भी नहीं मानते रावण तभी भी नहीं मानते, क्योंकि जो इंसान काम और क्रोध और मोह में फंस जाता वो नरक का द्वार में भागते। कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापात्मा विद्ये नमिह वैरिनम। आत्मज्ञानी को एक बहुत बड़ा दुश्मन है ये काम, दुमेना रहते वही यदा दर्शो मले नचा तदेन गर्भ तेना अवृतम अवृतम ज्ञानिनो ज्ञानिनो नित्य वैरिनः। भगवदगीता ये कहते हैं ज्ञानी को बहुत बड़ा वैरिन है, मतलब बहुत बड़ा दुश्मन है ये काम। जैसा दुआ को, जैसा दर्पण को धूल कवर करते हैं, शिशु को मां भी जैसे कवर करते हैं, वैसे ही इस आत्मा को काम का जो है ये कवर कर देता है। तो फिर रावण को जब मंडोदरी बोलते हैं कि हे रावण, तुम सीता को लौटाओ भगवान राम जी को, फिर रावण तभी भी नहीं सुनता, फिर क्या होते हैं अगले दिन का संग्राम में रावण जो है राम से खत्म हो जाता है। तो जो जीव इस भगवान का आदेश को पालन नहीं करता, फिर वो भी पतित होता है। नेक्स्ट ये हो जाता है, अपने प्रजा के प्रति पिता के समान स्नेही होना चाहिए। ये भी बताते हैं कि राजा अपना प्रजा को अपना ही संतान जैसा मानना चाहिए। तो इधर प्रभुपाद जी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं कि जब महाराज पृथु जो है, जितने भी उसका राज्य में प्रजा थे, चाहे वो इंसान हो या पशु हो या पक्षी हो, सबको समान दृष्टि से रक्षा करता था, सबको अपना ही पुत्र समझता था। लेकिन आजकल के गवर्नमेंट क्या करते, मतलब एक पर्टिकुलर पार्टी का नहीं है बोल रहा हूं, सभी कोई भी हो, जो शहर में बाकी पशु होता है, जैसा जानवर होता, गाय होता, ये सबको जो मारने के लिए यलो करते हैं देश का राजा, तो हम कैसा बोल सकते कि वो महाराज पृथु का रिप्रेजेंटेटिव होगा। मतलब वो पशु हो पक्षी हो मानव हो, सभी भगवान का ही संतान या पुत्र माना जाते हैं। तो राजा जो है भगवान विष्णु का प्रतिनिधि होकर अपने संतान अपने पुत्रों को रक्षा करना चाहिए। कभी मानव को रक्षा करने के लिए, मानव का पेट भरने के लिए पशुओं का खत्म करने का स्लॉटर हाउसेस ओपन नहीं करना चाहिए। जो एक बार प्रभुपाद जी से कोई पूछा कि श्रील प्रभुपाद, कई लोग गाय को खाना चाहते हैं, क्या करें, वो कितना भी बोले वो लोग एग्री नहीं करता। तो प्रभुपाद जी एक अद्भुत आइडिया दिया, प्रभुपाद जी एक वंडरफुल आइडिया दिया, बोलते कि ठीक है उसको खाने दो, खाने के लिए उसको मारना चाहिए, उसको बोलो कि उसको नहीं मारना, जब वो अपने आप खत्म एक दिन खत्म हो जाता, एक दिन गाय अपने आप मर जाते, मरने के बाद उसका डेड बॉडी जो है, डेड बॉडी दे, वो डेड बॉडी का कट करके खाएगा। ये आइडिया कैसा है आप लोगों का? हाउ यू फाइंड दिस आइडिया? प्रभुपाद जी एक अद्भुत आइडिया देता है। तो अगर किसी को पशु को खाना है, एक जानवर को खाना है, जब जानवर मरेगा, जब उसका मृत शरीर है, उसको कट करके खाने का, तब ये जो पाप जो है नहीं लगता। तो फिर नेक्स्ट ये बोलते हैं, ये लास्ट सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है भक्त लोग। पहला तीन मैंने बताया, लेकिन लास्ट सेंटेंस वैष्णव धर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से श्रवण करो। अपने आप को भगवान की महिमा का उपदेश करने वाले भक्तों का परम आज्ञाकारी दास समझता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देश का राजा हरिभक्तों का दास समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? हरिभक्तों का दास समझना चाहिए, किसी का दास नहीं, हरिभक्तों का दास। मुकुंद माला स्तोत्र में महाराज कुलशेखर आलवार, वो भी महाराजा थे, वृत्यस्य वृत्य परिचारिक वृत्यस्य वृत्य वृत्य, वो बोलते हैं कि मैं हरिभक्तों का दास का दास का दास हूं। वो भाव होना चाहिए राजा के अंदर। इसमें मैं आपको बताता हूं, महाराजा प्रताप रुद्र जो है, एक ऐसा बड़ा राजा था भगवान गौरंग चैतन्य महाप्रभु के समय में। एक बार जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान रथ के रथ जो है यात्रा हो रहे, और भगवान गौरंग नृत्य कर रहे थे। ये भक्त लोग बहुत सावधान से श्रवण करो। भगवान गौरंग जब नृत्य कर रहे थे तो महाराज प्रताप रुद्र भी दर्शन कर रहे थे, और भगवान गौरंग के आंखों में आंसू आ रहे थे, और कृष्ण प्रेम का उन्माद में उसका मुंह से भी लाला जल नीचे आ रहे थे, उसका कान से भी, उसका आंखों से आंसू आ रहे थे। तो ये देखकर भगवान गौरंग का अमृत, ये नृत्य देखकर महाराज प्रताप रुद्र बहुत आनंद हुए, मगर उसका हृदय में थोड़ा संशय हुआ था। ये कैसा, मतलब आंखों में आंसू क्या है, ये मुंह से लाला जल नीचे, ये क्या है, ऐसा सोच रहा था। तो वो घर चले गए, और जब नींद में गए, उसका स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आए थे, और भगवान जगन्नाथ सिंहासन में बैठे, और भगवान जगन्नाथ का अंकों से आंसू धारा आ रहे थे, भगवान के मुंह से ऐसा लाला जल आ रहे थे, भगवान का कान से भी पानी ऐसा आ रहे थे। तो भगवान जगन्नाथ बोलते हैं कि फिर महाराज प्रताप रुद्र उठ के भगवान जगन्नाथ जी को कुछ फ्लावर कुछ सजाना चाहते थे, तो भगवान जगन्नाथ बोलते हैं, हे राजन मेरे को स्पर्श मत करो, तुम मेरे को स्पर्श करेगा तो शायद तुम अपवित्र हो जाओगे, मेरे को तो चंदन और पुष्प और हार इस सजाते तो आप आके मेरे को आरती देते, स्तोत्र पढ़ते, और जब मेरा आंखों से आंसू आते, मेरा मुंह से लाला जल निकलते, तो फिर आप शायद मेरे को स्पर्श नहीं करना चाहिए ना। सो भगवान को ये देखकर महाराज प्रताप रुद्र फिर तुरंत अपना मिस्टेक को समझते हैं। फिर भगवान जगन्नाथ अदृश्य हो जाते, और फिर देखेंगे तो फिर सिंहासन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बैठते होते, और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आंखों से भी आंसू आ रहे थे, हे कृष्णा बोलते, कृष्ण महामंत्र को उच्चारण करते भगवान गौरंग ऐसे बैठे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर महाराज प्रताप रुद्र समझता है कि भगवान जगन्नाथ ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। देखो देश का राजा कैसा होना चाहिए, ये सेंटेंस में महाराज प्रताप रुद्र के द्वारा बताता हूं। एक बार महाराज प्रताप रुद्र जगन्नाथ मंदिर गए थे, तो उधर पुजारी लोग भगवान जगन्नाथ जी का आरती दिया और कुछ पुष्प दिया, फिर वो जगन्नाथ जी का जो स्थान में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया, फिर तुरंत वो पुजारी को बुला के बोलते हैं कि ए महाराज जी आपको कौन दिखता उधर? तो वो पुजारी पीछे देखता, बोलते हैं कि उधर तो भगवान जगन्नाथ महाप्रभु है। मैंने आप मेरा डर से आप सब बोल रहे हो या ये एक बार देखो? वो बोलते नहीं, मेरे को तो जगन्नाथ ही दर्शन हो रहा। तो फिर वो ऐसा देखा, फिर जगन्नाथ का दर्शन हुआ, फिर थोड़ा टाइम देखा चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हुआ, फिर वो समझते हैं सही कृष्ण सही जगन्नाथ। वो समझते हैं, हरि बोल। अरे तो इस तरह लीला करते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु महाराजा प्रताप रुद्र से। तो एक बार महाराजा प्रताप रुद्र भगवान चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए बहुत तड़पते हैं, तो मगर चैतन्य महाप्रभु एंटरटेन नहीं करता था, उसको अलाउ नहीं करता था। तो फिर उधर काशी मिश्रा करके एक महान ब्राह्मण था, तो उसके पास जाके उसका पैरों में मसाज करते थे और बोलते कि हे पंडित जी, मेरे को कृपा करके भगवान चैतन्य महाप्रभु का एक क्षण का दर्शन दिला दो। तो फिर वो बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु इंटरेस्टेड नहीं है आपसे मिलने के लिए। देखिए, हरिभक्तों का सेवा करने के लिए एक राजा कैसे तड़पते हैं, ये उदाहरण है। हालांकि इधर चैतन्य महाप्रभु हरिभक्त के रूप में आए, साकी वो स्वयं भगवान है। तो फिर उन्होंने कहते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं कि हे राजन, तुम चिंता मत करो, जब भगवान चैतन्य नृत्य करते हैं ना, नृत्य करने का टाइम में वो ऐसा कृष्ण प्रेम में नृत्य करते हैं कि वो बेहोश होकर नीचे गिरते हैं। जब बेहोश होकर नीचे गिरते हैं वो अच्छा समय है आप जाने के लिए, बाकी टाइम में ना आपको राजा आकर के देख के वो स्पर्श भी नहीं करेगा। एक बार क्या हुआ, भगवान चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे जगन्नाथ जी के सामने, और भगवान नित्यानंद प्रभु बहुत दूर में थे और वक्रेश्वर पंडित भी दूर में थे। एक बार सडनली बेहोश होकर नीचे गिर गए। नीचे किसके सामने गिर गए? महाराज प्रताप रुद्र के सामने नीचे गिर गए। तो महाराज प्रताप रुद्र तुरंत उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद भगवान गौरांग बेहोश से बाहर आए, देख, अरे ये तो विषय ही है, ये तो राजा है, ये तो भौतिक संसार का विषय वांछों में लग्न है, ये स्पर्श नहीं करता मेरे को, कितना मेरे को कितने प्रॉब्लम है। भगवान ऐसे बोलते कि मैं स्पर्श नहीं करूंगा इसको। लेकिन जैसा भगवान चैतन्य उससे दूर होते रहा, महाराज प्रताप रुद्र में वही तड़पन शुरू किया कि गौरांग महाप्रभु को मैं मिलना है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं कि हे राजन, ऐसा नहीं है, तुम ऐसा करो, ये राजा का जो ड्रेस है ये निकालो, और निकाल के शुद्ध वैष्णव का ड्रेस पहनो, धोती कुर्ता तिलक ये धारण करके तुम भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास जाओ। तो वो इंद्र सरोवर में स्नान करके भगवान गौरंग उधर इंद्रद्युम्न लेक आप देखा होगा जगन्नाथपुरी में, उधर स्नान करके फिर उधर एक उद्यानवन रहता, उधर जाके भगवान गौरंग सो जाते। बहुत ही नृत्य करके करके भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत ही विश्राम लेना चाहते हैं, जाके उधर सो जाते हैं। जब वो सो जाते हैं तो वो समय में ये जो महाराज प्रताप रुद्र आते हैं, सभी भक्तों का प्रणाम करते और जाके भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ लेते। देखो इधर ये महाराजा है, पूरा उड़ीसा उत्कल देश का राजा है, ये तो सन्यासी है, सब घरों में जाकर बिगिन करने वाला, मतलब बाहर बाकी दृष्टि से देखेंगे तो जाके उसके चरणों को पकड़ लिया। चरणों को पकड़ लिया तो तुरंत भगवान चैतन्य को थोड़ा बेहोश से बाहर आए। वो टाइम में श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद का चैप्टर 29, 30, 31, 33 ये पांच चैप्टर को रास पंच अध्याय बोलते। क्या बोलते? रास पंच अध्याय, पांच चैप्टर जो रास रुचि को वर्णन करता। लेकिन ये जो प्रोफेशनल भागवतम रिसाइटर्स जो है, श्रीमद् भागवत का सप्ताह में क्या करते, जो प्रभुपाद जी हमेशा खंडन करते, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, ये जो वैष्णव नहीं होते जो प्रोफेशनल भागवतम का बताते सप्ताह, वो लोग क्या करते हैं, श्रीमद् भागवत का 9 स्कंद ये तो ज्यादा डिस्कस नहीं करता, 10वां स्कंद में भी ज्यादा डिस्कस नहीं करता, सीधा जाके रासवृक्ष का जो पांच चैप्टर में उसमें आ जाते। तो ये भागवत सप्ताहों में केवल ये पांच चैप्टर को पढ़ने के वजह से प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत आदिलीला चैप्टर 8 में बोलते हैं कि लोग सोचते हैं कि अरे ये कृष्ण भगवान कभी भी देखो बाकी कुछ लीला नहीं किया क्या, केवल यही लीला किया गोपियों के साथ नृत्य करना। तो लोग सोचते हैं इन लोगों के वजह से, ये भागवत सप्ताहकार के वजह से, कि भगवान कृष्ण शायद एक औरतों को पीछे पड़ने वाले वुमेन हंटर है शायद, ऐसा सोचते भगवान कृष्ण के ये जो प्रोफेशनल भागवतम रिसाइटर्स। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं अवैष्णवों के द्वारा तुम भागवत मत सुनो कभी, वैष्णवों के द्वारा जो वैष्णव परंपरा से जो आए उसके मुखारविंद से भागवत श्रवण कर। तो फिर इधर भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात विष्णु है, इधर महाराज प्रताप रुद्र शुद्ध वैष्णव है, तो उन लोगों के कॉम्बिनेशन में श्रीमद् भागवत रास पंचाध्याय पढ़ सकते। वो टाइम में महाराजा प्रताप रुद्र भगवान गौरंग चरण को मसाज करते हुए वो गोपी गीत जो भागवत का दसम स्कंद का रासमुच वर्णन करने का जो पांच चैप्टर है बहुत ही श्राव्य कंठ से वो गाना शुरू करते। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु ये श्रवण करते तुरंत उठ के बोलते और पढ़ो और गाना गाओ और भागवत पढ़ो और बोलते। तो फिर ये समय में भगवान गौरंग भूल जाते कि महाराज प्रताप रुद्र है, ये विषय ही है, इसको टच नहीं करना चाहिए, ये भूल जाते भगवान। तो वो बोलते और पढ़ो और पढ़ो। तो फिर महाराज प्रताप रुद्र को बहुत एनकरेजमेंट आता और बोलते हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम श्रीमदाततम श्रवण मंगलम भुवि गृणन्ति ये भूरिदा जना। ऐसा श्रीमद् भागवत का जो दसम स्कंद का जो गाना है बहुत ही मधुर गाना है। प्रणत देही नाम पापकर्षणम, गोपियां बोलते हैं कि हे भगवान गोविंद प्रणत देही नाम पापकर्षणम, तुम्हारे दिव्य चरण कमल का महिमा ऐसा है उसके सामने जो भी प्रणाम करते हैं उसका पाप को जो है कष्ट खंडन करते हो। प्रणत देही नाम पापकर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम, तुम्हारा श्री चरणों में ही लक्ष्मी देवी। फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम, तुम्हारा चरण कमल उस फणियों के फणों के ऊपर नृत्य किए हे परमेश्वर। फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचेषणा कृंदि हृषयम, कृपा करके तुम्हारा वो दिव्य चरण कमल हमारे स्तनों के ऊपर रखो। ये श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद में है। ये जैसे सुनते हैं भगवान गौरंग महाप्रभु राधा भाव में आ जाते और बोलते और पढ़ो और पढ़ो और जाके उसको आलिंगन करते हैं और बोलते कि मैं तुम जो अद्भुत जो रत्न वैढूर्य मुझको दिया मैं इन रिटर्न आपको कुछ भी नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए केवल मेरा आलिंगन दे पा रहा हूं। बोलिए हरि बोल हरि बोल। वो आलिंगन करते भगवान चैतन्य महाप्रभु महाराज प्रताप रुद्र को, इस तरीके से भगवान प्रताप रुद्र को उद्धार करते। तो प्रताप रुद्र का स्टोरी में और एक महाराजा भक्तों को कितना आदर करना चाहिए और एक उदंत आता है। एक बार बाबानंद राय, आप जानते हो कौन है बाबानंद राय, कौन बोल सकते हैं? भगवान गौरंग के लीला में ये जो पांच पांडव है वो लोग क्या बनते, रामानंद राय भवानंद राय ये जो है ये पांच पांडव इस तरीके से गौरंग महाप्रभु के लीला में भी आ जाते। तो महाराज पांडु भवानंद राय बनते तो रामानंद राय इत्यादि वाणीनाथ राय ये लोग पंच पांडव इस अवतार लेते हैं। उसमें एक गोपीनाथ पट्टनायक करके एक होता, वो भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर था। एक दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने आश्रम में थे और भगवान गौरंग महाप्रभु की कृपा से हम सुन सकते, अगर भगवान गौरंग की कृपा नहीं है हम ना बोल सकते ना सुन सकते। सो उस समय भगवान गौरंग महाप्रभु पुरी में थे, भक्त लोग दौड़ते आए। एक बार बोलते कि हे भगवान बहुत ही घोर आपत्ति आए। क्या आपत्ति आए? तो बोलते कि गोपीनाथ पटनायक को गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर दिया। कौन है गोपीनाथ पटनायक? बहुत शुद्ध वैष्णव था, महान भक्त थे। तो क्यों अरेस्ट किए, क्या हुआ? तो देश का राजा इसको छंगा के ऊपर उठा दिया। छंगा मतलब वो ऐसा एक वेदी है उसके ऊपर उस आदमी को बिठाते, नीचे जो स्वॉर्ड्स रहते हैं ना तलवार इस तरीके से रहता, और जब वो छंगा का वो टेबल को ऐसे निकाल देते वो आदमी उस तलवार के ऊपर गिर के उसका प्राण खत्म होते, वो छंगा के ऊपर लौटा दिया इसको। तो फिर भगवान गौरंग बोलते तो मैं तो एक सन्यासी हूं, मैं क्या कर सकता हूं इसमें, मैं केवल हरि नाम करना मालूम है मेरे को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मैं क्या कर सकता हूं, अब चाहिए तो भगवान जगन्नाथ से पूछो। तो फिर वो बोलते हैं कि नो नहीं ऐसा नहीं भगवान, आप तो कृपा करना चाहिए। तो वो क्या किया, तो वो बोलते हैं कि वो गवर्नमेंट का जो खजाना का इंचार्ज था वो तो पूरा पैसा पे नहीं किया गवर्नमेंट को, 2 लाख रुपया नहीं, वो टाइम में कुछ अलग नाम है, वो 2 लाख रुपया अपने पास रख दिया। तो इसके वजह से राजा ने उसको छंगा के ऊपर मौत का सजा दिया। तो भगवान गौरंग महाप्रभु गुस्सा करते, तो उसमें मैं क्या करूं, गवर्नमेंट का पैसा देना चाहिए, अगर गवर्नमेंट का पैसा खुद रख के ये औरतों का नाच गाना देखने के लिए अपना पूरा समय व्यस्त कर रहे, ये पापी है, इसको भी तो मैं रक्षा नहीं करूंगा, ऐसे बोलते भगवान। तो फिर इस दूसरा और एक आदमी दौड़ते आते, भगवान अभी तो इसको चंगा में अभी उसको निकाल देने वाले हैं, उसको तलवार के ऊपर डालने वाले, अभी समय आ गया कुछ करो। तो सब लोग भगवान बोलते तो मैं तो सन्यासी, इसको मैं इसको डिस्टर्ब मत करो बोलते। फिर ये जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी रामानंद राय सब लोग भगवान गौरंग को साष्टांग प्रणाम करते, हे भगवान हमको कुछ नहीं है, वाहिमाम रक्षा करो, तुम ही रक्षा कर सकते। तो फिर वो समय में क्या होता कि सब लोगों का प्रार्थना के वजह से एक भक्त राजा के पास जाते, राजा के पास जाके बोलते हैं कि हे राजन, ये गोपीनाथ पटनायक बहुत बड़ा अच्छा सेवक था, केवल 2 लाख रुपया के वजह से तुम उसको मौत का सजा दे रहे हो। तो राजा ने क्या कहते हैं, अरे मेरे को मालूम ही नहीं है, ये कैसा, मेरा बेटा शायद किया होगा ये, मेरे को मालूम नहीं है। तो फिर वो बोलता है ठीक है, उसको तुरंत रक्षा करो बोलते, तुरंत ये जाके भागते भागते जाते हैं और वो चंगा से वो गिरने वाले थे वो समय में उसको रक्षा कर दे, उसको बोले कि नीचे उतारा नीचे उतारा, बोलिए गौरंग महाप्रभु की। उस लास्ट क्षण में है ना, लास्ट मोमेंट में उसका रक्षा मिलता। ये हम देखते हैं हरिभक्तों का महिमा, भगवान गौरंग महाप्रभु इतने हरिभक्ति दिखाया कि जगन्नाथ रथ जो है एक बार निकल नहीं रहा था, एक बार रुक गया, जब रुक गया तो महाराज प्रताप रुद्र आके एक बलिष्ठ पुरुषों से बोलते हैं तुम लेके जाओ उसको, वो लोग आते हैं, महामल्ल युद्ध है, वो लोग आते हैं बहुत खींचते हैं रथ जो है आगे नहीं बढ़ता। तो फिर महाराज प्रताप रुद्र क्या करते हैं, जो हाथिया है उस हाथियों को, बड़े बड़े हाथियों को लेके आते, वो हाथिया भी उस रथ को खींचने के लिए हाथियों को वो लोग मारते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन हाथी इतने भी प्रयास करते वो रथ आगे नहीं जाता। महाराज प्रताप रुद्र सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि भगवान जगन्नाथ को कैसे आगे बढ़े। सब लोग चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करते, भगवान गौरंग उधर आते, सबको बोलते तुम निकल जाओ इधर से, सब लोगों को बोलते तुम हट जाओ इधर से, अपने भक्तों को बोलते तुम पकड़ो रस्सी, अपने भक्तों को बोलते रस्सी पकड़ो, रस्सी पकड़ो जस्ट ऐसे नाम के वास्ते, नाम के वास्ते, ताकि क्रेडिट भक्तों को जाता ना। तो फिर भगवान गौरंग रथ के पीछे जाता जाते और केवल अपना ऐसा मुख से ऐसा करते, उखड़ने के मात्र से ही वो रथ जो है इतने स्पीड से भागते 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 सुंदराचल पहुंचते, अब जो बोलते गुंडीचा बोलते सुंदराचल उधर पहुंचते, और भक्त का रस्सी जो है ऐसे कड़ा रहते हो, लोग कुछ खींचते भी नहीं है। वैसे ये कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट भी भगवान चैतन्य महाप्रभु पुश कर रहे, हम लोग केवल रस्सी पहनने का पकड़ने का जस्ट ऐसा दिखावट भी किया तो चलेगा, हम कुछ कर रहे जैसा, निमित्त मात्रम भव सव्य साचन। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये कुरुक्षेत्र युद्ध में ये कौरवों को मैं ऑलरेडी खत्म कर चुका हूं, लेकिन तुम उन लोगों को से युद्ध करके तुम क्रेडिट ले लो बस। वैसे भगवान प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये 10,000 सालों तक ये कृष्ण प्रेम का जो आंदोलन है पूरा जगत में फैल जाएगा, और ये भगवान कृष्ण का इंटरनल इच्छा है, इसको कोई रोक नहीं सकते। आप पूछ सकते हैं कि प्रभु जी ये कहां बताया, ये पद्म पुराण में गंगा देवी भगवान कृष्ण के पास जाके बोलते हैं, कलयुग जब शुरू हो जाता भगवान गोविंद को प्रणाम करके गंगा मैया बोलती है, गोविंद तुम चले जाने के बाद घोर कलयुग शुरू हो जाता, जहां पापी ही पापी भर जाते, केवल पापियां भर जाते, कीर्ति कांता कनकम, मतलब प्रतिष्ठा, औरत और पैसा, ये तीनों से चलता पूरा दुनिया कलयुग। तो इस कलयुग का पापियों को कैसा उद्धार करे, मैं तो बहुत डरा हुआ। तो भगवान कृष्ण हंसते बोलते हे गंगे, तुम चिंता मत करो, ठीक 5000 साल होने के बाद में मेरा मंत्र उपासक आएगा, मेरा महामंत्र उपासक आएगा। और जब ये जो पाखंडी यवन लोग भारत को छोड़कर पाश्चात्य देश में जाएगा ना, तो ये मंत्र उपासक पाश्चात्य देश में जाके उसको उद्धारण करेगा। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश ताने। अब देखिये ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, रूप गोस्वामी का जो ब्रांच है ना चैतन्य वृक्ष में, चेतन चरितामृत में जो चैतन्य वृक्ष जो आप पढ़ा होगा उसमें रूप गोस्वामी का कितना नंबर आता, 30th नंबर, ब्रांच नंबर 30 चैतन्य वृक्ष का जो ब्रांचेस, तो उसमें रूप गोस्वामी का ब्रांच बोलते हैं ये वेस्टर्न डायरेक्शन में ज्यादा स्प्रेड हो जाता। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारे भक्तिदान्त सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को बोलते हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज में जाके पहले उन लोगों को उद्धार कर, फिर भगवान कृष्ण गंगा मैया से बोलते हैं, उसके बाद में पूरा संसार में कोई भी वर्ण नहीं रहेगा, केवल एक ही वर्ण रहेगा, वो है हरि भक्तों का वर्ण। बोलिए हरि नाम संकीर्तन की। पूरा संसार में 10,000 सालों में घर घर में शहर शहर में भगवान श्री कृष्ण का अमृत नाम ऐसी फैल जाएगा, पृथ्वी आचे जत नगराधि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो वो मोर नाम। ये भगवान का ऑर्डर है, हर घर में भगवान कृष्ण का भक्ति फैलेगा, हर घर में कृष्ण प्रेम का रसास्वादन को लोग टेस्ट करेगा, कृष्ण प्रेम कैसा रहता। फिर कोई भी वर्ण नहीं रहता ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, केवल एक ही वर्ण है हरि भक्तों का वर्ण। और हे गंगे, उस हरि भक्तों का चरण का रज से पूरा भूमंडल पवित्र हो जाता है। जब वो हरिभक्त तुम्हारा धामों में आते, तुम्हारा नदी का जल में स्नान करते, पापियों का जितना भी पाप है ना वो पूरा नष्ट हो जाता है। हरिभक्त का इतना महिमा है कि जब वो नृत्य करते हैं पूरा भूमंडल का अमंगल चले जाते हैं। जब वो नृत्य करते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा आकाश को देखते नृत्य करेगा, आकाश में जितने भी अमंगल है वो चले जाते। वो 10 दिशा में देखते हैं ना, पूरा 10 दिशाओं में 10 दिशाओं का अमंगल चले जाता। हरिभक्तों का स्पर्श से संसार में 3 वस्तु है जिसका प्राण प्रतिष्ठा जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति को प्रतिष्ठा करने के लिए प्रतिष्ठा का मंत्र चाहिए ना, वेदों का मंत्र। लेकिन भगवान हरि का 3 रूप है जिसका प्रतिष्ठा करने के लिए कोई मंत्र ही जरूरत नहीं। वो 3 क्या है बताइए? सालग्राम को तो बहुत पूजा पाठ, बहुत मंत्र यंत्र तंत्र सब होता है, भागवतम, तुलसी और वैष्णव। ये 3 को कोई प्रतिष्ठा ऑटोमेटिकली प्रतिष्ठापित है हरिभक्त जो है। इसलिए भगवान कृष्ण का प्रेम पाना है, कृष्ण भक्तों को पहले प्रेम करना चाहिए, हमेशा सोचना चाहिए कृष्ण भक्त को देखकर तुरंत मैं कृष्ण भक्त का दास हूं, मेरा जिंदगी मेरा जन्म धन्य हुआ कृष्ण भक्तों का दर्शन मात्र से। इसलिए जब नाम के शुद्ध नाम ग्रहण करना है तो हरिभक्तों को कभी निंदा नहीं करना चाहिए, हमेशा हरिभक्तों का, इवन राजा भी क्यों ना हो वो हरिभक्तों का सेवा करने में लग्न होना चाहिए। ये एक सेंटेंस से पूरा गवर्नमेंट को मालूम होता, गवर्नमेंट कैसा चलाना है वो हरिभक्तों का सेवा करने के लिए गवर्नमेंट चलाना है। तो आप अगर आप बोलेंगे कि देखिए प्रभु जी ये गवर्नमेंट सेक्युलर है वो कैसा हो सकते, तो एक देश का राजा का धर्म क्या है? अपने प्रजा को उद्धार करना। कैसा उद्धार हो जाते? जन्म मृत्यु के चक्र से, हरिभक्ति से ही उद्धार होते हैं। तो देश का राजा का ये धर्म होता हरिभक्तों को हरिभक्ति साधन करने का जो माहौल है जो वातावरण है उसको क्रिएट करना हर देश का राजा का लक्षण होता है। तो इसलिए हरिभक्त का महिमा हमेशा गुणगान होना चाहिए। इसलिए शास्त्र ये कहते हैं कि भगवान की महिमा का उपदेश करने वाले भक्तों का परम आज्ञाकारी दास बनना चाहिए। भगवान का महिमा का उपदेश करने वाले कौन है? भगवान का महिमा का उपदेश करने वाले उसको शिक्षा गुरु बोलते हैं, वैष्णव बोलते हैं, हरिभक्त बोलते हैं। हरिभक्त का मुख से केवल हरि का गुणगान निकलता है। जो अवैष्णव है, वैष्णव नहीं है, क्या वो गुरु बन सकते? क्या वो गुरु बन सकते? अवैष्णव गुरु न सस्याद, वैष्णव स्वपचो गुरु। अवैष्णव गुरु न सस्यात, अवैष्णव वैष्णव नहीं है तो वो गुरु नहीं बन सकते। वैष्णव स्वपचो गुरु, अगर वैष्णव है वो कुत्ता का मांस खाने वाले का घर में क्यों ना पैदा हो। स्वपच मतलब कुत्ता का मांस खाने वाले, उसका घर में भी क्यों पैदा क्यों नहीं हुआ हो, वो गुरु बन सकते अगर वो हरिभक्त बन गया तो। ये है हरिभक्ति। जो ब्राह्मण सब वेद मंत्र जानता है लेकिन हरिभक्ति नहीं करता, वो चंडाल से भी नीचे है। लेकिन वो चंडाल का जन्म कुटुंब में भी क्यों ना जन्म लिया होगा अगर, लेकिन वो हरिभक्ति करता वो ब्राह्मण से भी ऊपर। ये शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण से भी ऊपर है हरिभक्त। यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, बहुत ही गहरा है। तो भगवान का महिमा का उपदेश करने वाले, तो भक्त लोग आप लोग मेरे को पूछ सकते हैं कि प्रभु जी भगवान का महिमा का उपदेश क्यों करना चाहिए बाकी लोगों को, कोई उत्तर दे सकते हैं? भगवान कृष्ण का महिमा का उपदेश हम सब लोग बाकी लोगों को करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कोई बोल सकते? जस्ट ट्राई करो। राम का महिमा हम बाकी लोगों को उपदेश करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं नहीं तो? भगवान कृष्ण का राम का महिमा का उपदेश, उसका महिमा का गुणगान हम सबको बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? बहुत ही अद्भुत आंसर। हरी बोल हरी बोल। भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही प्रिय कार्य है ये, कहां बताया? भगवद गीता का 18 अध्याय में भगवान गोविंद अर्जुन से बोलते हैं, हे कृष्ण, हे अर्जुन, ये भगवद गीता में जो मेरा महिमा है, ये उपदेश जो बाकी संसार को बताएगा वो इंसान मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। कैसा प्रिय है? अत्यंत, बहुत ही गहरे से प्रिय है, और उससे बढ़कर प्रिय कोई नहीं है मेरे को संसार में। तो अगर आपको भगवान कृष्ण का स्पेशल प्रिय होना चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण का महिमा हर इंसान को, हर व्यक्ति को फैलाना चाहिए। तो वो कैसा कर सकते? आप पूरा शास्त्र पढ़ के बोल सकते, अगर पूरा शास्त्र नहीं पढ़ा तो फिर आप कैसा कर सकते? और एक है, और एक रास्ता है, कोई बोल सकते हैं? प्रभु जी, हम कल कोई फंक्शन करने वाले, एग्जैक्टली बोलते हरी बोल हरी बोल। ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब भगवान श्री कृष्ण का महिमा जहां गुणगान किया हुआ है, उस साहित्य को, उस किताबों को बांटने से भगवान का महिमा का उपदेश भी हो जाते। ये प्रभुपाद जी ने बताया, प्रभुपाद जी ने बताया कि आपका 2 मिनट का प्रीचिंग क्या करेगा। वो बोलते हैं मेरा किताब जो है बांटो, वो उससे उस व्यक्ति का जो है जीवन से उद्धार हो जाएगा। आपका 2 मिनट का प्रीचिंग से क्या होगा, ये श्रील प्रभुपाद जी ने बताया। श्रील प्रभुपाद जी ने बताया जो मेरा किताब बांटेगा, जब वो मरेगा मैं स्वयं आके उसको लेके जाऊंगा। उतना नहीं, जो मेरा किताब बांटेगा और जब उस व्यक्ति मरता है वो समय में स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आके लेके जाएगा। हरी बोल। और प्रभुपाद जी बोलते जो मेरा किताब बांटेगा, ये बैक टू गॉड एक शॉर्टकट है। आप भगवान कृष्ण का धाम एक शॉर्टकट में जाना चाहते तो ये प्रभुपाद जी का साहित्य को वितरण करना, जब उस साहित्य में इतनी अलौकिक कृपा है तो उसको एक सेंटेंस पढ़ने से भी उसका उद्धार हो जाते, ये एक्चुअल फैक्ट है। तो हे भक्त, ये भगवान का महिमा का उपदेश करने का मीनिंग है प्रभुपाद जी का बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना। ये बहुत ही प्रसन्न, प्रभुपाद जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं उससे कि गुरु, जब तक हम गुरु का कृपा नहीं पाते हम एक्चुअली भागवत को नहीं समझते। अब बोलते हैं कि प्रभु जी ये कृपा का क्या मीनिंग है, मैं डायरेक्ट भागवत पढ़ लेता हूं, मैं समझता हूं, मैं एक बहुत बड़ा पंडित हूं। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको एक याद दिलाता हूं, शंकर भगवान पार्वती से बोलते हैं अहम वेत्ति सुखो वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा। क्या बोलते हैं? अहम वेत्ति, मैं भागवत को जानता हूं, सुखो वेत्ति, सुखदेव गोस्वामी जानता है, व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा, व्यास भगवान शायद जानते हैं या शायद जानते नहीं है, मेरे को मालूम है। तो बोलते कि वेद व्यास भी शायद जानता है भागवत या नहीं जानता भी होगा। तो जब तक गुरु का कृपा नहीं होता तब तक व्यास जी भी शायद भागवत को नहीं समझते। तो हे भक्तगण, भगवान का कृपा को समझना है, भगवान को समझना है, भगवान का महिमा का हम सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले श्रील प्रभुपाद जी का कृपा को पाने के लिए बहुत प्रयास करना चाहिए। और भगवान प्रभुपाद जी का कृपा कैसा मिलता हम मन में स्पेकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी ओपनली सीक्रेट बताया कि अगर किसी को मेरा कृपा चाहिए तो डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, मेरा किताब बांटो, ये करने से मैं गारंटेड मेरा कृपा दे दूंगा मेरा गारंटेड कृपा दूंगा। आप बोल सकते कि ऐसा कैसे बोल सकते, आचार्यों को वो स्पेशलिटी, आचार्यों को एक महिमा है। भक्त लोग, एक छोटा सा मैं ये कहानी बोल के बंद करता हूं आज का भागवतम। श्रीपाद रामानुजाचार्य आप जानते हो ना, एक दिन श्रीरंग में दूध नहीं मिल रहा था, तो फिर भगवान का सेवा कैसे करे, तो पूरा ढूंढने के बाद एक औरत के घर में दूध मिला। तो उस औरत को बुलाते, बहुत प्रार्थना करते, कृपा करके प्लीज आपका दूध दे दो, भगवान का सेवा करना है। तो वो औरत बोलते हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य से कि हे गुरुदेव जी, आप मेरे को एक गारंटी देंगे तो मैं आपको दूध दे दूंगा। तो क्या गारंटी है, क्या चाहिए, मेरे को लिख के दो, मैं मरने के बाद वैकुंठ जगत जाऊंगा और साइन करके स्टाम्प करके दो। तो फिर तो वो शिष्य को बुलाता, बोलते पेन एंड पेपर लेके आओ, मरने के बाद आप वैकुंठ जाते, सिग्नेचर स्टैंप दे दो। ये आचार्य होता है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ एफल्जेंट। ये एक्चुअली आचार्य, आचार्य का वो शक्ति है। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो मेरा बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो जब मरता है मैं स्वयं आके लेके जाऊंगा, दिस आई एम गिविंग अ पर्सनल गारंटी। तो केवल बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कोशिश करना भक्त, उस बुक्स में इतने अमृत छुपा हुआ है, केवल उसका दर्शन मात्र से जीवन को उतार होता है, दर्शन मात्र से। भगवदगीता में इतने ट्रेमेंडस पावर है आप इमेजिन नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक पढ़ने से, स्कंद पुराण बोलता है, एक श्लोक पढ़ने से श्रीमद् भागवत का जीव को संसार चक्र से उद्धार होता। तो इतने अलौकिक महिमा है इस वैष्णव धर्म में, कृपा करके इसको आलंबन कर लीजिए और जो भागवत में लिखा उसको एज इट इज पालन कर लीजिए। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो हम 2-3 मिनट चर्चा कर सकते हैं। कोई प्रश्न कैसा भी हो आप पूछ सकते हैं, आप मतलब चिंता मत करो कि वो बुद्धिमान प्रश्न है या उतना पावरफुल प्रश्न है, चिंता मत करो।
जो प्रोफेशनल भागवत वाले हैं, प्रोफेशनल जो भागवत वाले हैं, उनका क्या थर्मामीटर कैसे पता लगे,
उसका
क्या थर्मामीटर है, कैसे पता लगे कि भाई ये
प्रोफेशनल
है कि नहीं है।
बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रभु जी का ये प्रश्न है। जो प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि प्रोफेशनल भागवतम कथाकार से भागवत श्रवण मत करो, प्रभु जी पूछते हैं कि ये प्रोफेशनल भागवतम कथाकार को हम कैसा पहचानेंगे। हाँ, एक है कि प्रोफेशनल भागवतम कथाकार जो है वो वैष्णव नहीं होता। जो वैष्णव तिलक धारण किया, फर्स्ट हम बोल सकते हैं कि ओके ठीक है, फर्स्ट टेस्ट पास हो गया, पहला टेस्ट पास हो गया। वैष्णव तिलक धारण किया, पहला टेस्ट है कि क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू पद्म पुराण जो ये जो गोपी चंदन का तिलक धारण करते उसको वैष्णव के रूप में मानना चाहिए। जो ये जो कंठी माला धारण करते हैं वो स्कंद पुराण के हिसाब से वो एक्चुअली वैष्णव जैसा मानना चाहिए हमको, पहला फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है वो एज इट इज गुरु परंपरा के हिसाब से रिपीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो हम एक टेस्ट करना चाहिए। वो करना हमको इजी होता अगर वो पहला स्कंद से आगे आगे बढ़ रहा या डायरेक्ट रास पंचाध्याय में जा रहा, वो उससे भी हमको पता चलता। और क्या वो भगवान कृष्ण का रूप टेम्पररी है बोल रहे या भगवान को निराकार है बोल रहे, उससे भी हमको पता चलता। अगर वो बोलेगा अल्टीमेट सत्य निराकार है तो मानना चाहिए कि वो केवल तिलक लगाया लेकिन वो शुद्ध वैष्णव का धर्म फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि शुद्ध वैष्णव भगवान कृष्ण का दिव्य स्वरूप को ही भजन करेगा। ठीक है, ऐसा बहुत सारे लक्षण है, मैं इन डिटेल बता देता हूँ कभी। हर एक का एक प्रश्न लास्ट एंड फाइनल। कल्कि का अवतार प्रभु जी अभी नहीं होता, 4,20,000 के बाद में, 4,20,000 सालों के बाद में कलयुग का चतुर्थ पाद, अभी कलयुग का प्रथम पाद चल रहा, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, लास्ट 4,20,000 साल होने के बाद कलयुग का अंत जब होता तब कल्कि भगवान आते, अभी नहीं। अभी तो कलयुग शुरू होकर 5,000 साल हुआ, हम ये शुरू का 5,000 के बाद का 10,000 बोल रहे हैं। 10,000 होने के बाद ये कृष्ण का जो प्रचार हुए वो जो है प्रैक्टिकली स्टॉप हो जाते, फिर रियल कलयुग शुरू हो जाते। जब वो रियल कलयुग 4,00,000 साल चलता, उससे लोगों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण कल्कि के रूप में आते। समझ लिया? श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।
हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।